नमस्कार विद्यार्थियों, हम अध्ययन कर रहे हैं कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने। यानी कविता के बहाने वो कविता के महत्व को समझाना चाहते हैं। दरअसल आज यांत्रिकता के जीवन के दौर में कविता का महत्व घटता जा रहा है। यांत्रिकता भरा जीवन से तात्पर्य ये हो जाता है कि एकदम कृत्रिम या आर्टिफिशियल एक जीवन जीने के संदर्भ में, जैसे हम लोग शहरों में देखते हैं या महानगरों में देखते हैं, वहाँ लोगों के बीच में आपसी भाव खत्म होते जा रहे हैं, उनके बीचों के इमोशन खत्म होते जा रहे हैं, लोग स्वार्थी हो चुके हैं, उनके जो आपसी संबंध है वो स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं, उनके जो अंदर के भाव है ऐसा लग रहा है कि मानो वो खत्म से हो गए हैं। इस दौर में लोग एक कविता को महत्व नहीं दे रहे। कविता को महत्व, कविता क्या है? कविता एक भावों का ही, भावों की एक अभिव्यक्ति है। कविता भावों की अभिव्यक्ति है, जो मनुष्य के अंदर के भाव मन में उमड़ रहे होते हैं उन्हीं की अभिव्यक्ति कविता शब्दों के रूप में सामने आती है। तो महानगरीय जीवन जिस तरह से स्वार्थी हो चुका है और इस स्वार्थीपन के चलते उसमें कृत्रिमता ज़्यादा आती जा रही है, ऐसे में उसके भाव भी खत्म होते जा रहे हैं। ये भाव को जगाने का काम है, उनके मानवीय व्यवहार को, मानवीय संबंधों को समझाने का काम कविता करती है। और कविता इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि यदि महानगरीय जीवन यूं ही चलता गया, स्वार्थीपन पर आधारित चलता रहा, कृत्रिम होता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि समाज में सामाजिकता की भावना खत्म हो जाएगी। लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जी रहे होंगे और व्यक्तिगत स्वार्थ एक समय इतना हावी हो जाएगा कि समाज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाएगा, एक हिंसक प्राणी की तरफ बढ़ता चला जाएगा, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी का भी गला घोंट सकता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी के साथ भी धोखा कर सकता है। तो ऐसे में तो समाज ही खत्म हो जाएगा। मनुष्य फिर सर्वश्रेष्ठ प्राणी नहीं कहलाया जाएगा, बाकी प्राणियों की तरह हो जाएगा कि भूख शांत करने के लिए किसी को भी किसी जानवर को मार दिया, उसको खाया, भूख शांत हो गई। उसी तरह से मनुष्य को हो गया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी के साथ धोखा कर दिया, यहाँ तक रिश्ते नाते इनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, आचार विचार धर्म नैतिकता ये सारी चीज़ें खत्म होती जाएगी। क्योंकि क्यों, क्या हो रहा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा जटिल जीवन जी रहा है, कृत्रिम जीवन जी रहा है। कृत्रिम जीवन जीने के चलते, जटिल जीवन जीने के चलते वो भाव को महत्व नहीं दे रहा है। ये उसके भाव यूँ मानिए कि कहीं सो से गए हैं, सुप्त पड़ गए हैं। तो उन भावों को जगाने का कार्य कविता कर रही होती है। उसके अंदर भाव जागृत हो गए तो आपसी संबंधों को मनुष्य समझेगा, सामाजिक संबंधों के महत्व को समझने लग जाएगा, पारिवारिक संबंधों के महत्व को समझने लग जाएगा और वो फिर सामाजिक जीवन जीने की तरफ बढ़ेगा। और सामाजिक जीवन जितना ज़्यादा व्यक्ति जीते हैं तो उतना ही हमारा समाज बहुत बेहतरीन बनता है। व्यक्ति को सामाजिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक होना मतलब समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की भावना, सामाजिक होना समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की भावना, उनके सुख दुख को, अब उनके सुख दुख में अपने आप को शामिल करने का भाव रहना, उनके सुख दुख को अपना समझना, एक समान भाव से सभी से प्रेम करना, वो सामाजिकता की भावना आती है, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष भाव नहीं होता। तो इस सामाजिकता को जगाने के लिए, मनुष्य के अंदर सुप्त हो चुके हैं या खत्म से हो गए भाव को जागृत करने के लिए कविता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कवि यही कार्य करता है कि मनुष्य के अंदर जो सोए हुए भाव है उनको जगाने का कार्य करवाता है, उनको महसूस कराता है, उनके अंदर की मनुष्यता को पहचानने का प्रयास करता है कि उनके मानव होने के महत्व को दर्शाता है कि आप मानव मनुष्य बने, बाकी प्राणियों से बेहतर बनने का कारण यह है कि आप भावनात्मक रूप से बाकी प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे दौर में कविता का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज तो बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे होते हैं कि महानगरीय जीवन में एक अवसाद वाली, तनावपूर्ण वाली जिंदगी जी रहे होते हैं। क्योंकि तनाव और अवसाद तब आता है जब व्यक्ति स्वार्थी और व्यक्तिगत जीवन जी रहा होता है, सिर्फ अपने लिए जीवन जीता है, तो तनाव और अवसाद की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अपने लिए जीने वाला व्यक्ति को कभी सुकून महसूस नहीं होगा। भले ही उसके पास में संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे, लोगों की नज़र में माना जाएगा कि बहुत ज़्यादा समृद्ध है और सुखी है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन संसाधनों से भी सुख है या सुकून तब मिलता है जब वो अपनों के साथ में इनको साझा करके उपयोग में लाता है। ये समाज के साथ अपने आप को बांट कर चल रहा होता है, समाज के साथ अपने आप को शामिल करके चल रहा होता है, तभी व्यक्ति सुकून के साथ में जीवन जी पाता है। अन्यथा वह अवसाद और तनाव की तरफ चला जाएगा, अकेलेपन की स्थिति की तरफ चला जाएगा, स्वार्थी बनेगा, कृत्रिम बनता जाएगा, तो लोगों के साथ धीरे धीरे उससे टूटता चला जाएगा, दूर होते जाएंगे लोग, अपने आप में सीमित होते चले जाएंगे, अपने आप में जीवन जीने लग जाएंगे, तो ऐसे अकेलेपन की स्थिति बन जाएगी, कोई अपना नहीं रहेगा जिसके साथ में अपना सुख दुख हम लोग साझा कर सके, बता सके। तो व्यक्ति अपने लिए नहीं जी सकता, उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो जब भूल चुका होता है समाज को, उसके अंदर भाव खत्म हो चुके होते हैं, वो कृत्रिम बन गया है, व्यक्तिगत हो गया, स्वार्थी हो गया, तो ऐसी स्थिति में अवसाद तनाव अकेलेपन की तरफ जाता है, तो एक उसके भयानक परिणाम निकलने लगते हैं समाज में। उन सारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लेखक ने ये बताया कि हमको इस कृत्रिमता से, यांत्रिकता से, स्वार्थीपन से बाहर निकलने के लिए साहित्य की मदद लेनी ही पड़ेगी। साहित्य के माध्यम से हमारी समझ विकसित होती है, साहित्य हमको सामाजिक संबंधों की पड़ताल करना सिखाता है कि हमारे सामाजिक संबंध कैसे होने चाहिए, हमारे मनुष्य होने की विशेषता क्या है, क्यों हम बाकी प्राणियों से बेहतर होते हैं, ये सारी चीज़ें साहित्य सिखा रहा होता है। सिर्फ मनुष्य की उपलब्धि का पैमाना इससे नहीं माना जाएगा कि उसने वैज्ञानिक स्तर पर इतनी सफलताएं प्राप्त कर लिए, इतने उपग्रह सैटेलाइट स्थापित कर दिए, उनसे नहीं हो गए, ये सारी चीज़ें संसाधन है और ये मनुष्य के लिए होती है, मनुष्य इनके लिए नहीं बना कि उपग्रह के लिए मनुष्य बन गया, सैटेलाइट के लिए मनुष्य बन गया, या वैज्ञानिक तकनीकी जो भी सुख सुविधाएं बनाए गए उनके लिए मनुष्य बनाए, उनके लिए नहीं बना, बल्कि मनुष्य के लिए बनाया गया ताकि उसका जीवन सहज हो जाए, लेकिन उल्टा चला आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मनुष्य इन चीज़ों के लिए बनाओ, मनुष्य पैसा कमाने के लिए बनाओ, धन दौलत कमाने के लिए बनाओ। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि धन दौलत ये बाकी संसाधन मनुष्य के जीवन को सहज और सुखी बनाने का एक साधन है, ना कि साध्य उद्देश्य नहीं है सब चीज़ें। उद्देश्य तो यह है कि हमारा जीवन बहुत बेहतरीन रहे, सामाजिक रहे, सुखी रहे, हमारे सामाजिक संबंध बहुत बेहतरीन रहे, हम परिवार के साथ और समाज के साथ में सुखी जीवन बिताए। यहाँ पर कुंवर नारायण के जीवन के बारे में बताया गया कि कुंवर नारायण ने ये कविता लिखी है, तो उनको उनकी समझ भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर की उन्होंने शिक्षा प्राप्त भी की, और साथ ही उनको साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़े पुरस्कार भी मिले। साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदुस्तान में दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। उसके सारी कृतियों के आधार पर, जो रचनाएं लिखी गई उन सब के आधार पर दिया जाता है, उसके योगदान को देखते हुए कि हाँ सबसे महत्वपूर्ण रचना इन्होंने लिखी है। ये पुरस्कार है राष्ट्रपति प्रदान करता है। दूसरे नंबर पर आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, किसी एक रचना पर आधारित होता है वो, कोई रचना इतनी मौलिक होती है, समाज की दृष्टि से बहुत अच्छी होती है, उस रचना के आधार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। यानी साहित्य के दो बड़े बड़े पुरस्कार तो उनको मिल चुके थे, इसके अलावा उनको और भी पुरस्कार मिले, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, और केरल का कुमारन आसान पुरस्कार। इन आधार पर पता लगता है कि जैसे ही किसी साहित्यकार के आगे ये टैग लगता है कि उस ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है, तो हम लोग ये तय कर लेते हैं कि बहुत अच्छा एक कवि या लेखक होगा जिनकी रचनाएं हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ठहरती है, इनकी रचनाएँ है जिनका जिक्र यहाँ पर स्लाइड 3 में लिखा गया है। स्लाइड 4 में कवि के परिचय के बारे में बताया गया कि इन कविता की विशेषता क्या थी, इन्हें सामाजिक ऊहापोह तनाव से पूर्ण ऐसी स्थिति इनकी चल रही थी जीवन में, मतलब अवसाद तनावपूर्ण ये स्थिति कैसे बनती है, स्वार्थीपन के चलते, कृत्रिमता के चलते जो महानगरीय जीवन में चलता है, व्यक्ति अपने आप में उलझ रहा होता है, वो नहीं तय कर पा रहा है कि वो क्यों जी रहा है, उसका जीवन जीने का उद्देश्य क्या रहता है, अवसाद और तनाव की स्थिति से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को उन्होंने समझा, मनुष्य के अंदर दिमाग में क्या चल रहा होता है उनको समझा, और कविता के माध्यम से या अन्य विधाओं के माध्यम से सामने लेकर आए कुंवर नारायण। और भाषा इनकी बहुत सहज भाषा में लिखते हैं ये। कभी ऐसा नहीं कि इन्होंने अपना पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए बहुत जटिल भाषा का इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि हम लोग देखते हैं मुक्ति बोध शमशेर की भाषा, शमशेर बहादुर सिंह की भाषा थोड़ी जटिल मिल जाती है, लेकिन कुंवर नारायण की भाषा बहुत सीधी और सहज होती है। इन्होंने किसी प्रकार के अपने विद्वत्ता बताने के लिए जटिल शब्दों का इस्तेमाल कहीं पर नहीं किया। स्लाइड 5 में आते हैं, जहाँ कविता का जो उद्देश्य सार इनके बारे में बताया गया है कि कविता ये इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, इनका कविता संग्रह है, और इस कविता में आज के समय कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है लोगों को कि कविता का कोई महत्व नहीं रह गया। कविता लोगों को लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही है, कुछ लिख देते हैं कुछ पंक्तियाँ, जबकि वो कुछ पंक्तियाँ नहीं होती है, वो एक समाज का एक बहुत बड़ा सार होती है। इस समाज लोगों को एक सही दिशा देने का, उनके अंदर के भाव को जागृत करने का एक भाव रहता है उसमें। कविता भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, ठीक है। कविता के माध्यम से मनुष्य अपने भाव को आदान प्रदान कर रहा होता है, और कवि क्या करता है, इस कविता के माध्यम से लोगों के अंदर के भाव को जागृत करता है, उन भाव को समझने की एक समझ विकसित कर रहा होता है। व्यक्तियों के जो सामाजिक संबंध है उनको समझने की विकसित उनके दिमाग में कर रहा है कि हमारे सामाजिक संबंध अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं, उनकी समझ विकसित कर रहे हैं। आज यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यांत्रिकता जैसे महानगरीय जीवन में व्यक्ति कृत्रिम हो चुका है, स्वार्थी हो चुका है, आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा है वो, ऐसा लग रहा है कि जैसे रोबोट की भांति चल रहा है वो, कहीं से उसको संचालित किया जा रहा है। जैसे रोबोट को संचालित करता है, जैसे चाहते हैं वैसे काम करते हैं, वैसे मनुष्य धन दौलत है और स्वार्थ के वशीभूत होकर इनके अनुसार कार्य कर रहा है, अपने नियंत्रण खो चुका होता है, वह स्वार्थ के नियंत्रण में आ चुका होता है, धन दौलत के नियंत्रण में आ चुका होता है, इनकी भाग दौड़ में भूल चुका होता है कि उसका जीवन जीने का उद्देश्य क्या है। तो ऐसी स्थिति में कविता बहुत ज़्यादा पार संभावना को टटोलने का अवसर देती है। कविता मतलब कविता मनुष्य को सही दिशा में लाने का कार्य करती है, उसके अंदर के भाव को जागृत करती है, उसके जीवन जीने के उद्देश्य को समझाती है, सामाजिक होने के उद्देश्य को समझाती है, सामाजिकता के महत्व को बताती है कि व्यक्ति किस तरह से सामाजिकता से कट कर अलग हो गया और दुखी और अवसादपूर्ण जीवन जी रहा है। ये कविता को लेखक ने बहुत सहज भाषा में लिखा है, उदाहरण देके बताया है बहुत छोटे छोटे से, यानी एक आम पाठक भी इसको पढ़कर है बहुत बारीकी से समझ सकता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने उदाहरण लिया, चिड़िया को लिया, फूल को लिया और बच्चों से लिया। पहले तो चिड़िया को लेकर लिया उदाहरण कि जिस तरह से चिड़िया आसमान में उड़ती है, ठीक है, एक घर से दूसरे घर में बैठ जाती है, एक डाल से दूसरे डाल में चली जाती है, उसी तरह से ये कविता भी कल्पनाओं की उड़ान के सहारे जीती है, क्योंकि कविता में जो भाव रहते हैं उनको कल्पनाओं के सहारे अभिव्यक्त किया जाता है, तो कविता भी कल्पनाओं के सहारे अभिव्यक्त हो रही होती है शब्दों का सहारा लेकर, ठीक है। और उड़ान लेकिन है चिड़िया से कुछ ज़्यादा आगे, जैसे चिड़िया की एक सीमा होती है, एक समय बाद तो वो भी थक जाती है, ये एक ऊंचाई के बाद तो वो भी नहीं उड़ पाती, लेकिन जो कल्पनाएँ होती है इनकी कोई सीमा नहीं होती है, कल्पनाएं बहुत ऊंची की जा सकती है और कभी थकती नहीं है, ठीक है। भविष्य को लेकर, हमारे सुनहरे भविष्य को लेकर हम कल्पनाएं कर रहे होते हैं, बहुत आगे तक की कल्पनाएं कर रहे होते हैं, और बहुत ऊंची कल्पनाएं कर रहे होते हैं। जिस तरह से चिड़िया की तो सीमा रहेगी, एक हद तक से उड़ पाएगी, एक समय बाद वो थक जाती है उड़ते उड़ते, लेकिन कविता थकती नहीं है, भविष्य को लेकर उसके कवि के दिमाग में कल्पनाएं जो आ रही होती है, असीम कल्पनाएं जिसकी कोई सीमा नहीं है, बहुत ऊंची कल्पनाएं उसके दिमाग में आ रही होती है। एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसी कल्पनाएं वो दिमाग में कर रहा होता है। वो कहते भी जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँच पाती वह कवि के कल्पनाओं के सारे कवि वहाँ तक पहुँच जाता है, कवि वहाँ अपने कल्पनाओं के सारे वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँचती। यानी कवि की जो सोच कल्पनाओं की जो उड़ान है बहुत ज़्यादा सीम रहती है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई बंधन नहीं है। दूसरा यहाँ पर लिया है फूल से लेकर, फूल से तुलना करते हुए बताया है कि जैसे फूल सुगंधित होता है और फूल सबको बहुत आकर्षित लगता है, मनमोहक लगता है, उसकी सुगंध लोगों में आनंद महसूस कराती है। फूल सुगंधित रहेगा, लोगों उसको उसकी महक को महसूस करेंगे तो आनंदित होंगे, उनको अच्छा लगेगा फूल की सुगंध से। ठीक है, सुगंध को महसूस करके और आकर्षित भी लगता है। उसी तरह से कविता अपने भावनाओं के माध्यम से, कविता में जो भाव रहते हैं उनके माध्यम से लोगों को आनंद प्रदान करती है, मतलब उनको एक सुकून प्रदान करती है, रस प्रदान करती है, भाव प्रदान करती है। ठीक है, फूल की तरह, जिस तरह से फूल सुगंधित होता है और फूल की सुगंध लोगों को आनंद प्रदान करती है, उसी तरह से कविता के अंदर जो भाव है वो लोगों को आनंद प्रदान है कर रहे होते हैं। लेकिन फूल की भी एक सीमा होती है, एक समय बाद वो भी मुरझा जाता है, उसका रस खत्म हो जाता है, उसकी सुगंध खत्म हो जाती है। लेकिन कविता की सुगंध और रस कभी खत्म नहीं होता, कविता कभी मुरझाती नहीं है। फूल मुरझा जाएगा, फूल की सुगंध खत्म हो जाएगी, ठीक है, और फूल झड़ जाएगा, एक समय बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं, नष्ट नहीं होती। कविता का मुरझाना मतलब कविता जैसे कि फूल की जो सुगंध है, एक समय बाद उसके अंदर ताजगी खत्म हो जाएगी, लेकिन कविता की ताजगी कभी खत्म नहीं होती। ताजगी मतलब है ना, कविता के अंदर जो भाव है वो हमेशा ताज़ा बने रहते हैं, वो हमेशा देश का, जैसे कि कबीर दास ने और तुलसीदास ने बहुत समय पहले कविता लिखी गई है, लेकिन आज भी कविता ऐसा लगती है कि आज के समाज के लिए लिखी गई है, तो एकदम ताज़ा लगती है, आज के समाज के लिए प्रासंगिक लगती है, बहुत समय पहले लिखा गया वो, कबीर दास ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा, रैदास ने लिखा, मीरा ने लिखी, वो कविता आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, आज भी प्रेरणा दे रही है, आज भी लोगों को आनंद प्रदान कर रही है, आज भी लोगों को नई दिशा दे रही है, मुरझाई नहीं है बल्कि आज भी प्रभावशाली बनी हुई है उतनी जितनी पहले थी। इसके लिए एक शब्द आता है कि इसमें काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि ये उस इस काल के लिए लिखी गई है, आगे आने वाले समय के लिए भी उतनी प्रभावशाली होती है। उस रचनाओं को कालजीय रचना भी कहा जाता है। तीसरा इन्होंने लिया बच्चे से तुलना करते हुए लिया, जिस तरह से या तो चिड़िया और फूल से तुलना करते हुए बताया, और उससे ज़्यादा कविता के महत्व को बताया गया, चिड़िया और फूल की सीमाओं के बारे में बता दिया, चिड़िया की सीमाएँ रहती है, फूल की सीमाएँ रहती है। ठीक है, बच्चे के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से बच्चा अपनी मन का मालिक होता है, जो खेल खेल रहा होता है छोटा बच्चा, उसका खेल कभी नियमों में बंधा नहीं रहता। जैसे हम लोग देखते हैं क्रिकेट है, क्रिकेट नियमों में बंधा हुआ है, 6 रन 6 बॉल में एक ओवर होता है, वो सारे सब चीज़ों का नियम बंधा रहता है। लेकिन जो बच्चा जो खेल खेल रहा होता है उसका कोई नियम नहीं होता, अपनी मर्जी से खेलता है, कितने समय के लिए खेलेगा, कैसे खेलेगा उस पर तय करेगा, अपनी इच्छा से खेल बना रहा होता है वो। उसी तरह से कविता भी लेखक है अपनी इच्छा से शब्दों के माध्यम से रचनाएं कर रहा होता है, कोई बंधन नहीं होता, कोई नियमों में बंधी नहीं होती कविता कि नहीं इस व्याकरण में आप गढ़ दीजिए इसको तभी आपकी कविता अच्छी होगी, अलंकार नहीं है तो आपकी कविता अच्छी नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। कविता के लिए अलंकार, रस, छंद वगैरह जितने भी व्याकरण वाली चीज़ होती है, इनमें बंधनों में नहीं बनती है, उसको आप अपने अनुसार कविता में अपने भाव आप ही स्पष्ट कर सकते हैं, तुकबंदी की भी जरूरत नहीं होती है। यदि आपको भाव स्पष्ट करना होता है तो आप कविता में कर सकते हैं, जरूर नहीं तुकबंदी बने, जरूर नहीं उसमें अलंकार व्याकरण के जो रस छंद अलंकार ये सब चीज़ें आते हैं, ये रस तो रहता है, ये छंद अलंकार जैसे तुकबंदी वगैरह ये सब चीज़ों को होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है भावों की अभिव्यक्ति, जिससे आजकल की जो कविता है वो गद्यात्मक लिखी जाती है। ठीक है, और बच्चों से तुलना करते हुए बताया कि बच्चों के समान है, जैसे कई बार बच्चे को हम लोग अधिकतर देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होता, वो अपने साथी के साथ खेल रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि ये निम्न जाति से है, ऊंची जाति से, या अन्य धर्म से है, या किसी गरीब है या अमीर है, ये सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग में नहीं आती, सारे बच्चे एक समान होते हैं। खेलने के दौरान गरीबी अमीरी या धर्म जाति के आधार पर भेदभाव उनके मन में नहीं आता, खेलने के दौरान एक घर से दूसरे घर में भी चले जाते हैं दौड़ भाग लगाते हुए, तब ये नहीं देखते कि ये घर पड़ोसी का है, ये घर मेरा दुश्मन का घर है, या ये इस धर्म का घर है, ये इस जाति का घर है, ये गरीब का अमीर का है, ये सारे ख्याल उसके दिमाग में नहीं आते, ये इन तमाम तरह के भेदभाव को भुला करे वो एक समान भाव से सब बच्चों को देख रहे होते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को। उसी तरह से कविता भी बिना किसी भेदभाव के भावों की अभिव्यक्ति करती है, ये नहीं देखती कि इस धर्म में या इस जाति में या इस विचारधारा में बंध कर कविता लिखी जाएगी, इन तमाम तरह के बंधनों से मुक्त होकर कविता लिखी जाती है। इस तरह से कविता पूरे समाज को एक सूत्र में बांधती है, एक समान भाव से देखने की हमारी समझ विकसित कर रही होती है।